आमोस अध्याय दो। मोआब के विरुद्ध, क्योंकि मोआब और अमोन दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती क्षेत्र है। आमोस अध्याय दो पद एक। यहोवा यूं कहता है, मोआब के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। मोआब का राजा भी अपवित्र किया जाएगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा के शरीर को चूने के गड्ढे में गलने के लिए फेंक दिया। आमोस अध्याय दो पद दो और तीन। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे किरियोत के भवन भी भस्म हो जाएंगे, और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्यायी को नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। वो इसराइल के आसपास के राज्यों के विषय भविष्यवाणी कर रहा है, परंतु उसके ध्यान का केंद्र इसराइल है। वो शीघ्र ही अपने मुख्य विषय पर लौट आएगा। अब क्योंकि यहूदा दक्षिण राज्य भी इसराइल का पड़ोसी है, वो उसके बारे में भी भविष्यवाणी करता है। आमोस अध्याय दो पद चार। यहोवा यूं कहता है, यहूदा के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। आपको ध्यान होगा कि पौलुस कहता है, जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनका न्याय व्यवस्था के बाहर होगा। मोआब, अमोन, एदोम और सोर, पलिस्तीन, असीरिया का न्याय भी इसी आधार पर होगा। वो उनके मूल पापों को बताता है, जो मनुष्य के द्वारा बुरे और भले की समझ और ज्ञान का भाग है। परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार ही नहीं, व्यवस्था के बाहर भी न्याय करता है। कोई भी जान सकता है कि एक गर्भवती स्त्री के पेट को चीर डालना भयानक जघन्य अपराध है। ये एक विचार है जो हमारी कल्पना से परे है। इसलिए व्यवस्था का वर्णन उन देशों के प्रति नहीं किया गया जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दी। उनका न्याय व्यवस्था के बिना होगा, लेकिन जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था दी उनका न्याय होगा और व्यवस्था के अनुसार होगा। जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनका न्याय नैतिक स्तर पर धार्मिकता और सही के आधार पर किया जाएगा। यहूदा ने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना था। आमोस अध्याय दो पद चार से लेकर छह तक। क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भी भस्म हो जाएंगे। यहोवा यूं कहता है। अब वो इसराइल के लिए कहता है। आमोस अध्याय दो पद छह। इसराइल के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। इससे प्रकट होता है कि इसराइल में गरीबों का शोषण हो रहा था। यहूदियों को ना छुओ, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परंतु दरिद्रों का शोषण भी मत करो, क्योंकि परमेश्वर उनकी भी रक्षा करता है। ये एक रोचक बात है कि परमेश्वर गरीबों का पक्ष लेता है। वो गरीबों में रुचि रखता है और उनके पक्ष में रहता है। वो उनका रोना सुनता है। इसराइल में गरीबों का दमन और शोषण हो रहा था। आमोस अध्याय दो पद 7 और 8, वे कंगालों की सिर पर की धूली का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। इसराइल के न्यायी आम जनता पर जुर्माना लगाकर उस पैसे को अपने भोग विलास में व्यय कर रहे थे। वे इस पैसे से राग रंग के लिए मदिरा खरीदते थे। आमोस अध्याय 2 पद 9, मैंने उनके सामने से एमोरियों को नाश किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नाश की। एमोरियों का बाहर से ही नहीं, भीतर से भी नाश किया जाएगा, कि उनके परिवारों तक का निशान मिट जाएगा, अर्थात संपूर्ण विनाश। इसीलिए आप किसी एमोरी से नहीं मिले हैं। आमोस अध्याय 2 पद 10 से लेकर 12 तक, और मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ, और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया। हे इसराइलियों, क्या ये सब सच नहीं है? वचन की ये वाणी है, परंतु तुमने नाजिरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। नाजिरों का उदय, नाजिर मन्नत एक ऐसी वाचा थी जिसमें नाजिर जन पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित रहता था। उन्हें मदिरा पान करना वर्जित था, अतः वे नाजिरों को पीने के लिए मदिरा देते थे, जिन्हें परमेश्वर ने भविष्यवाणी के लिए बुलाया था, उन्हें वे भविष्यवाणी करने से रोकते थे। आमोस अध्याय 2 पद 13, देखो मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पुलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। आपको उस देश में जाकर देखना चाहिए कि वे कैसे पुलों को गाड़ियों पर लाद कर ले जाते हैं, या गधों के ऊपर रख कर ले जाते हैं, या औरतें अपने सिर के ऊपर पुलों रख कर ले जाती हैं, ताकि उनकी सही छवि आपके मन में समा जाए। मैंने गधों पर पुले रखे हुए देखे हैं, ऐसा लगता है कि पुलों के ही 4 पैर हैं। आपको गधा दिखाई नहीं देता, परंतु पुलों का एक भारी गट्ठर सड़क पर चलता दिखाई देता। इसी तरह से औरतों पर पुले लदे हुए देखे हैं, नीचे केवल 2 पाव दिखते हैं और ऊपर बड़ा गट्ठर। आप औरत को देख नहीं सकते, लेकिन इन पुलों के नीचे से औरत की झलक दिखती है। उनकी गाड़ियां इतनी मजबूत नहीं होती, पहिया थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, और वे पुलों से उसको इतना भर देते हैं कि पहिए दब जाते हैं। यहां भविष्यद्वक्ता एक सजीव वर्णन करता है जिससे लोग तुरंत समझ जाते थे, क्योंकि उन्होंने इन छोटी गाड़ियों पर पुले भरते हुए देखे थे। परमेश्वर कहता है, मैं पुलों से भरी गाड़ी के समान नीचे को दबाया गया हूं। आमोस अध्याय 2 पद 14, इसलिए वेग से दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान ना मिलेगा। तुम आने वाले दंड से बचकर भाग नहीं पाओगे, चाहे तुम कितना ही तेज धावक हो। आमोस अध्याय 2 पद 14 में आगे लिखा है, और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम ना देगा, और ना पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। जब परमेश्वर अपना दंड देगा, तब कोई बचाव का मार्ग नहीं होगा। आमोस अध्याय 2 पद 15 और 16, धनुधारी खड़ा ना रह सकेगा, और फुर्ती से दौड़ने वाला ना बचेगा, सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा, और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वो भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए परमेश्वर इसराइल को दंड देगा और उससे वे बच नहीं पाएंगे।